जमानों की उमंग, बाब नंबर 13, फतह। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तीर नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। मत्ती 5:4, जबूर 11:91-12। अब शैतान ने सोचा कि जैसे येसु कलाम का हवाला देकर बात करता है, उसी तरह मैं भी उसे कलाम के जरिए अपने जाल में फंसाऊं। बस उसने खुदा के मुंह से निकलने वाले कलाम का हवाला देकर मसीह को आजमाइश में गिराने की कोशिश की। वो जलाली फरिश्ता की सूरत में जाहिर हुआ और अलमसीह पर वाजे करना चाहता था कि वो कलाम मुकद्दस की अहमियत से किस कदर वाकिफ है। बस मसीह को खुदा का बेटा साबित करने के लिए उकसाया गया। इब्लीस ने सोचा कि इस बार वो कामयाब हो जाएगा। इब्लीस ने खुदावन मसीह से इस तरह कलाम किया जैसे वो उसमें बिल्कुल एतमाद नहीं रखता कि वो खुदा का बेटा है। इसीलिए उसने कहा, अगर तू खुदा का बेटा है। लेकिन अलमसीह ने उसके शक का जवाब देना और सबूत मुहैया करना जरूरी ना समझा और अपनी जिंदगी को आजमाइश से दूर रखा। इसी तरह इब्लीस हमारे सामने आजमाइश तो ला सकता है, मगर गुनाह करने पर मजबूर नहीं कर सकता। उसने मसीह से कहा, अपने तीर नीचे गिरा दे। इब्लीस जानता था कि अल मसीह खुद को उसके कहने पर नीचे नहीं गिराएगा। इब्लीस उसे मजबूर नहीं कर सकता था जब तक अल मसीह उसे इजाजत न देता। वो उसकी इजाजत के बगैर गालिब नहीं आ सकता था। बल्कि ये कहना ज्यादा वाजिब होगा कि आसमान में न जमीन कोई ऐसी ताकत थी जो अल मसीह को मजबूर कर सकती थी कि वो खुदा की मर्जी बजा न लाए। अजीजो, इब्लीस हमें भी बदी करने पर मजबूर नहीं कर सकता जब तक हम अपना जहन और दिमाग उसे न दे दें। वो हरगिज अपना तसल्लुत कायम नहीं कर सकता। उससे पहले कि इब्लीस अपनी हुक्मरानी हम पर कायम करे, लाजिम है कि हमारा ईमान खुदा पर से जाता रहे और हमारी कुव्वत इरादी उसके ताबे हो जाए। एक बात जरूर याद रखिएगा कि बदी का हर ख्याल इब्लीस के तसल्लुत के लिए राह तैयार करता है। जब हम खुदा के मेयार पर पूरे नहीं उतरते तो ये इब्लीस को दावत देने के मुतरादिफ है जो बर्बाद करने के लिए हमारे अंदर दाखिल होता है। नीज हमारी हर कमजोरी और नाकामी उसे मसीह को सरजनिश करने का मौका फराहम करती है। देखिए, जब इब्लीस ने कलाम मुकद्दस का ये हवाला दिया कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा, तो उसने इन अल्फाज को हज़्फ़ कर दिया कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें, यानी सब राहों में जो खुदा की हैं। मसीह तो ताबेदारी की राह से मुनहरिफ नहीं होना चाहता था। अपने खुदा में मुकम्मल एतमाद रखते हुए वो खुद को ऐसी सूरत हाल में न लाना चाहता था जहां वो अपने बाप को मजबूर करे कि उसे बचाने आए। अगर वो ऐसा करता तो वो हमारे लिए ताबेदारी और खुदा में मुकम्मल भरोसा का नमूना न छोड़ सकता था। लिहाजा यसु ने इब्लीस से कहा, ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश न कर। और ये कलाम खुदावंद ने मूसा के जरिए बनी इसराइल से किया जब वो बायाबान में प्यासे थे। उन्होंने ये कहते हुए, खुदावंद हमारे बीच में है या नहीं, बुजुर्ग मूसा से पानी का मुतालबा किया। खुरूज 7:17। खुदावंद खुदा ने तो उनके लिए बड़े बड़े हैरतअंगेज काम किए थे, मगर फिर भी उन्हें मुसीबत के वक्त शक गुजरा आया। खुदा उनके दरमियान है या नहीं, बल्कि उसकी मौजूदगी का सबूत मांगा। हम देखते हैं कि इब्लीस मसीह यीशु को भी वही कुछ करने की तरगीब दे रहा है जो उसने बनी इसराइल को दी थी। खुदा ने कह दिया था कि अल मसीह मेरा बेटा है, और अब फिर साबित करना कि आया वो खुदा का बेटा है या नहीं, खुदा के कलाम की आजमाइश थी। ये तो कम एतकादी का इजहार था। इसलिए हमें कभी भी खुदा के सामने ऐसी दरख्वास्त न रखनी चाहिए जिससे उसका इम्तहान लेना मकसूद हो, बल्कि सब कुछ ईमान के साथ करना चाहिए, क्योंकि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वह मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। इब्रानियों 6:11। वहुम वो गुमान के साथ ईमान का कोई ताल्लुक नहीं। قیاس و گمان سے صرف وہی محفوظ رہ سکتا ہے جس میں حقیقی ایمان ہو، کیونکہ قیاس و گمان اور وہم وغیرہ ابلیس کا خاصہ ہے۔ ایمان تو خدا کے وعدوں کی ضمانت ہے اور فرمان برداری کرنے سے پھل ملتا ہے۔ وہم و گمان بھی وعدوں کا دعوے کرتا ہے، مگر وہ اسے اسی طرح استعمال میں لاتا ہے جیسے ابلیس لایا تھا۔ اس سے وہ گناہ کرنے کا محض بہانہ تلاش کرتا ہے۔ ایمان ہمارے پہلے والدین کی رہنمائی کر سکتا تھا کہ وہ خدا کی محبت کا یقین کریں اور اس کی شریعت کو مانیں، مگر وہم نے انہیں گناہ کرنے اور شریعت توڑنے کی ترغیب دی، اور یہ نہ سوچا کہ اس کی عظیم محبت ہمیں گناہ کے نتائج سے بچائے گی۔ یہ ایمان نہیں جب ہم ان تمام باتوں پر عمل نہیں کرتے جو رحم کا دروازہ کھولتی ہیں۔ حقیقی ایمان کی بنیاد کلام مقدس اور اس کے وعدوں پر مبنی ہے۔ جب ابلیس ہمارے ایمان کو متزلزل کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ ہمیں شک و شبہات کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ اگر وہ ہمیں کسی غیر ضروری آزمائش کے زیر سایہ لے آئے تو وہ اسے اپنی فتح خیال کرتا ہے۔ ہمیں کبھی نہ بھولنا چاہیے کہ جو خداوند کے تابع فرمان ہوں گے، خداوند خدا ان کی ضرور حفاظت کرے گا، لیکن جو خدا سے دوری اختیار کرتے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ابلیس کی سرزمین پر چل رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ہم ضرور کریں گے، کیونکہ نجات دہندہ نے ہمیں پہلے سے خبردار کر دیا ہے۔ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، مرقس 38:14۔ خدا کے کلام اور اس کے بارے غور و خوض ہمیں بڑی آزمائشوں سے رہائی بخشے گا۔ جب ہم پر آزمائش آئے تو ہمیں پست ہمت ہونے کی ضرورت نہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم آزمائش میں پڑتے ہیں تو سوچنا شروع کر دیتے ہیں، آیا خدا کا روح ہماری رہنمائی کرتا ہے؟ یاد رکھیے، یہ خداون کا روح تھا جو اسے بیابان میں ابلیس سے آزمانے کو لے گیا۔ جب خداون کوئی آزمائش ہم پر لاتا ہے تو یقین جانیے کہ اس میں ہماری کوئی بھلائی ہے۔ لکھا ہے، تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو۔ خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانی گزران، اور حق تعالیٰ کے لیے اپنی منتیں پوری کر، اور مصیبت کے دن مجھ سے فریاد کر، میں تجھے چھڑاؤں گا اور تو میری تمجید کرے گا۔ کرنتھیوں 13:10، زبور 14:50-15۔ مسیح خداوند دوسری آزمائش پر بھی غالب آیا۔ اب ابلیس اپنی اصلی صورت میں نمودار ہوا، کالی کلوٹی یا مکروہ شکل و صورت میں نہیں جیسے بعض شیطان کے بارے خیال کرتے ہیں۔ نہ اس کے کندھوں پر چمگادر کے پر تھے، نہ لمبے لمبے پاؤں۔ ہمیں بھولنا نہ چاہیے کہ وہ بڑا خبرو، جابر اور قدرت کا مالک ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ آسمان سے راندا گیا ہے۔ ابھی تک وہ تسلیم کرتا ہے کہ وہ باغی فوجوں کا لیڈر اور اس دنیا کا سردرا اور خدا ہے۔ اسی لیے مسیح خداوند کو ایک پہاڑ پر لے جا کر ابلیس نے اسے تمام دنیا کی شان و شوکت دکھائی۔ منظر بڑا سہانا تھا۔ مندروں، مسجدوں اور بڑی بڑی عمارات کے گنبدوں کے کلس سورج کی روشنی سے جگمگ جگمگ کر رہے تھے۔ سنگ مرمر کے محل، سرسبز و شاداب کھیتیاں اور پھلوں سے لدے ہوئے باغیچے اور نیلے پیلے بنخشی گلابی سبھی رنگوں کے پھول اٹکیلیاں کر رہے تھے۔ بدی کا ہر نشان چھپا دیا گیا تھا۔ مسیح یسوع 40 دن رات ویرانوں کو ہی دیکھتا رہا تھا، مگر اب اس کی آنکھوں کے سامنے جی کو لبھانے والی ہر چیز پائی جاتی تھی۔ اس وقت آزمانے والے کی آواز سنائی دی، اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا، یعنی یہ دنیا اور اس کی سب سلطنتیں، مگر اس ساری شان و شوکت کے لیے تجھے جھک کر مجھے سجدہ کرنا ہوگا۔ مسیح کے آنے کی غرض و غایت صرف دکھوں کے ذریعہ ہی پوری ہونا تھی۔ اس کے سامنے تو دکھ بھری زندگی، مصائب اور رسوائی کی موت تھی۔ اسے تو تمام دنیا کے دکھ جھیلنے تھے۔ اسے اپنے باپ کی محبت سے علیحدگی کے صدمہ سے دوچار ہونا تھا۔ وہ طاقت اور قدرت جسے ابلیس نے چھینا تھا اسی کی پیشکش کر دی۔ ابلیس کی حاکمیت کو تسلیم کر کے مسیح مستقبل کے دکھوں سے جان چھڑا سکتا تھا۔ دوسری طرف اس کا یہ بھی مطلب تھا کہ ابلیس کی فتح۔ ابلیس نے خدا کے بیٹے پر برتری حاصل کرنے کے لیے گناہ کیا تھا۔ अगर आज वो मغلوب हो जाता तो इबलीस फतह के शादियाने बजाता। जब इबलीस ने ये कहा कि सल्तनतें और दुनिया की तमाम शानो शौकत मुझे दी गई है और जिसको मैं चाहता हूं देता हूं, उसमें पूरी सच्चाई नहीं थी। ये धोखा के अलावा कुछ नहीं था। वो महज अपनी मतलब बरारी के लिए झूठ और सच की मिलावट करके पेश कर रहा था। जिस बादशाही की वो बात कर रहा था वो उसने आदम से छीनी थी, और आदम जमीन पर खुदा का नायब था। आदम तो खुद मुख्तार ना था। जमीन खुदावंद की है और उसने तमाम चीजें अपने बेटे के ताबे कर दी हैं। आदम को मसीह के ताबे रहकर उस जमीन पर हुकूमत करना थी। जब आदम ने अपनी हुकूमत इबलीस के हाथ दे दी, मसीह यस्सु फिर भी उसका जायज वारिस और बादशाह है। इसीलिए बनू कद नजर को खुदावंद ने यूं फरमाया कि हक ताले आदमियों की ममलिकत में हुक्मरानी करता है और जिसको चाहता है उसे देता है। दानियल 17:4। इबलीस का गुली इख्तियार नहीं कि कुछ कर सके। जब आजमाने वाले ने मसीह यस्सु को दुनिया की सल्तनत और शान शौकत की पेशकश की तो वो असल में मसीह यस्सु को कह रहा था कि तू दुनिया की बादशाही से मुकम्मल किनारा कशी कर और मेरे तहत रह के बतौर नायब बादशाही संभाल। और वो दुनियावी बादशाही थी जिस पर यहूदियों की उम्मीदें लगी हुई थीं। अगर खुदावंद मसीह उस दुनिया की बादशाही देने का इशारा यहूदियों से करता तो वो उसे बखुशी कबूल कर लेते, मगर उस सूरत में ये होता कि ये दुनिया गुनाह और उसकी तमाम लानतों के साथ यहूदियों पास आ जाती। ए इबलीस, मुझसे दूर हो, क्योंकि लिखा कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। वो जिसने आसमान में बगावत की थी उसके जरिए मसीह को उस दुनिया की पेशकश की गई जो उसके एवज उसे खरीदना चाहता था, मगर मसीह जमीर फरोश न था। उसे तो रास्तबाजी की बादशाहत कायम करना थी। यस्सु किसी सूरत में भी अपने मिशन से इन्हराफ ना कर सकता था। बनी नौ इंसान को भी इबलीस उस दुनिया की पेशकश करता है, मगर उस शर्त पर कि वो उसकी हाकिमियत को कबूल करे। उसकी शरायत ये है कि इंसान ईमानदारी को तर्क कर दे, अपने जमीर को मजरूह करे और खुद गर्जी का मुजाहरा करे। मगर मसीह का हुक्म ये है कि पहले तुम खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। मगर इबलीस इंसानों के पास आकर कहता है कि अगर तुम अबदी चीजें लेना चाहते हो तो उस दुनिया में कामयाबी हासिल करो, और उसके लिए तुम्हें मेरी खिदमत और इबादत करना होगी, क्योंकि तुम्हारी भलाई मेरे हाथों में है। मैं तुम्हें दौलत, ऐशो निशात, इज्जत और शादमानियां अता कर सकता हूं। मेरा मशवरा मानो, ईमानदारी और खुद इनकारी से भागो, और उस सब के लिए मैं आपके लिए रास्ता तैयार कर दूंगा। यूं अवाम धोखा खा जाते हैं। वो सिर्फ अपने ही लिए जिंदगी बसर करना शुरू कर देते हैं, और ये इबलीस के लिए नहायत ही खुशकुन बात है। यूं वो दुनिया को सब्ज बाग दिखाकर उनके दिलों पर हुकूमत कर लेता है। मगर ये तमाम आफतें जो वो दुनिया को देता है उसकी नहीं है, ये बहुत जल्द उससे छीन ली जाएंगी। इबलीस ने यही सवाल किया था कि आया मसीह खुदा का बेटा है, मगर वो उसका इनकार या तर्दीद नहीं कर सकता था। दुख सहने वाली बशरियत के जरिए अलूहियत उजागर थी। इबलीस मसीह के हुक्म की मुजाहमत ना कर सकता था, इसलिए शर्मिंदा और गजबनाक होकर वो नजात दहिंदा के पास से चला गया। जिस कदर आदम को भरपूर नाकामी का सामना करना पड़ा उससे कहीं ज्यादा कामयाबी यस्सु ने हासिल की। लिहाजा हम भी इबलीस का मुकाबला करके उसे भगा सकते हैं। मसीह ने खुद को खुदा के ताबे रखकर इबलीस को भागने पर मजबूर किया। बस खुदा के ताबे हो जाओ और इबलीस का मुकाबला कर, वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। ए गुनहगारो, अपने हाथों को साफ करो और दो दिलो, अपने दिलों को पाक करो। याकूब 7:4-8। हम पानी कुवत में खुद को नहीं बचा सकते। इबलीस ने तमाम इंसानियत को मغلوب कर लिया है, और जब हम अपनी कुवत में इबलीस का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं तो हम उसका शिकार हो जाते हैं। खुदावंद का नाम मोहकम बुर्ज है, सादिक उसमें भाग जाता है और अमन में रहता है। एमसाल 10:18। कमजोर से कमजोर रूह भी जो खुदा में पनाह पाती है उससे इबलीस डरता और थर थराता है। जब इबलीस उसे छोड़कर चला गया तो मसीह खुदावन निढाल होकर जमीन पर गिर गया और चेहरे पर मरूनी छा गई। आसमान के पाक फरिश्तों ने इबलीस और मसीह के दरमियान होने वाली जंग को करीब से देखा, ताहा और ये भी कि मसीह को बेबयां अज़ियत से गुजरना पड़ा ताकि हमारे लिए आजमाइश से निकलने का रास्ता तैयार करे। उसने इतनी बड़ी आजमाइश का सामना किया जो किसी भी इंसान को बर्दाश्त करना ना पड़ेगी। इसके बाद आसमानी फरिश्ते मसीह की खिदमत में मशगूल हो गए, उसे ग़िज़ा बहम पहुंचाई गई, खुदा की मोहब्बत और फतह की यकीन दहानी कराई गई जिसकी खुशियां सारा आसमान मना रहा था। उसमें दोबारा जिंदगी बहाल हुई और उसका दिल इंसान के लिए हमदर्दी से भर आया। लिहाजा यीशु मसीह जिसका म को करने आया था उसे तकमील तक पहुंचाने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसने अहद कर लिया था, जब तक दुश्मन मादूम न हो जाए और जब तक नस्ले इंसानी निजात न पाले वो दम न लेगा। जो कीमत मसीह ने हुमाए निजात के लिए दी वो किसी के भी वहमो गुमान में उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक निजात याफ्ता निजात दहिंदा के साथ खुदा के तख्त के सामने खड़े नहीं होते। उस वक्त ही हम बखूबी जान सकेंगे कि खुदावन मसीह ने निजात याफ्तगान के लिए सब कुछ छोड़ दिया और आसमानी बारगाहों से जलावतनी कबूल की। उस वक्त हम जरूर अपने ताज उसके कदमों में रखकर उसकी हमदो सना गाते हुए कहेंगे, जुबह किया हुआ बर्रा ही, कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हमद के लायक है। मुकाशफा 12:5।